ओम शांति
ओम शांति।
एक छोटा सा रात्रि क्लास है 20 दिसंबर 1967 का।
इट इज अ स्मॉल नाइट क्लास डेटेड 20th December 1967।
मुरली कब मिस नहीं करनी चाहिए?
यू शुड नेवर मिस द मुरली।
मुरली सुनने और समझने का बड़ा शौक होना चाहिए।
यू शुड हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द मुरली।
सवेरे के टाइम तो फुर्सत रहती है।
इन द मॉर्निंग आवर्स यू सर्टेनली हैव स्पेयर टाइम।
अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है।
नाउ यू चिल्ड्रन रिसीव द ईश्वरीय डायरेक्शन।
काहे से?
फ्रॉम वेयर?
मुरली से।
यू रिसीव इट फ्रॉम द मुरली।
वो मत नहीं आकर के लेंगे तो फिर पद क्या पावेंगे?
If you don't come and take that direction, what status will you attain?
बहुत फर्क हो जाता है।
There is a vast difference.
तो बात में?
In what?
पढ़ाई पढ़ने वालों में जो रेगुलर और पंक्चुअल होकर पढ़ते हैं और जो रेगुलर पंक्चुअल होकर नहीं पढ़ते हैं उनमें बहुत फर्क हो जाता है।
देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दोज़ हू स्टडी द नॉलेज रेगुलरली एंड पंक्चुअली एंड दोज़ हू डोंट स्टडी इट बीइंग रेगुलर पंक्चुअल।
क्योंकि ईश्वरीय मति मिलती है एक बाप से।
बिकॉज यू रिसीव द ईश्वरीय डायरेक्शन फ्रॉम द वन फादर।
और बाकी सब मनुष्य मात्र से आसुरी मत मिलती है।
एंड यू रिसीव द डिमोनिक ओपिनियन फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग।
मनुष्य मत से नरकवासी और ईश्वरीय मत से स्वर्गवासी बनते हो।
यू बिकम अ रेजिडेंट ऑफ हेल टू द ओपिनियन ऑफ ह्यूमन बींग एंड यू बिकम स्वर्गवासी मीनिंग अ रेजिडेंट ऑफ हेवन टू द ईश्वरीय डायरेक्शन।
क्या खास बात? ईश्वर मत में क्या खास बात है जो स्वर्गवासी बनते हैं?
वॉट इज सो स्पेशल अबाउट द ईश्वरीय डायरेक्शन दैट यू बिकम स्वर्गवासी?
ईश माना ही शासन करता और वर माना श्रेष्ठ।
ईश इटसेल्फ मीन्स अ रूलर एंड वर मीन्स एलिवेटेड।
जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है।
He is the most celebrated ruler of the world.
अच्छे से अच्छा शासन करता है।
He is the best ruler.
कोई शासन करते हैं कड़क शासन करते हैं।
Some rule in a harsh way.
दंड विधान का शासन करते हैं।
दे इम्पोज लॉ एंड पनिशमेंट।
और बाप जो शासन करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ शासन है।
एंड द वे द फादर रूल्स इट इज द मोस्ट एलिवेटेड रूल।
प्यार का शासन है, दिल का सौदा है।
ही रूल्स इन अ लविंग मैनर इट इज अ डील ऑफ लव।
इसलिए तुम ईश्वरीय मत से स्वर्गवासी बनते हो।
दिस इज वाई यू बिकम स्वर्गवासी थ्रू द ईश्वरीय डायरेक्शन।
फिर जब देवताओं का राज्य पूरा होता है तो मनुष्य होते हैं।
देन व्हेन द किंगडम ऑफ द डेटीज इज ओवर यू बिकम ह्यूमन बीइंग।
मनुष्य मत से फिर नीचे उतरते हैं। देवताओं के राज्य में नीचे नहीं उतरते थे क्या?
देन यू फॉल थ्रू ह्यूमन बींग्स ओपिनियन। didn't you fall in the kingdom of the deities?
देवताओं के राज्य में भी तो नीचे उतरे, 16 कला संपूर्ण से त्रेता के अंत में 8 कलाएं हो गई ना।
You did fall even in the kingdom of the deities. By the end of the silver age, you were reduced to 8 celestial degrees from being complete with 16 celestial degrees, weren't you?
फिर?
Then?
अरे उतरे तो।
Student, gradually. अरे you certainly fell.
उतरते हैं, लेकिन वो यहाँ संगम युग की शूटिंग का प्रभाव है।
You certainly degraded there, but actually it is the influence of the confluence shooting here.
शूटिंग पीरियड में जब कोई नई आत्मा आती है तो फोर्स से आती है।
When some new soul comes in the shooting period, he comes with a force.
पक्के श्रद्धा विश्वास से आती है।
He comes with firm faith and veneration.
इसलिए कहते हैं विश्वासम फलदायकम।
This is why it is said, faith brings rewards. विश्वासम फलदायकम।
जो पक्की श्रद्धा पक्का निश्चय बैठा हुआ है वो श्रद्धा ही उसको सत्व प्रधान स्टेज में ले जाती है।
The firm veneration and firm faith that he has, that veneration itself takes him to the sattva pradhan stage.
फिर धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं।
Then gradually they continue to fall.
आपस में लेन देन करने लग पड़ते हैं, या तो मनमत या तो मनुष्य मत का।
They start interacting among themselves. Either they follow their mind's opinion, manmat, or the opinion of the human being.
तो सतयुग त्रेता में जो मत मिली है वो संगम युग में ईश्वरीय मत मिली है। और त्रेता के बाद वो ईश्वरीय मत की प्रारब्ध क्लास हो जाती है।
So the direction that you follow in the golden and the silver age is actually the ईश्वरीय direction that you receive in the confluence age. And after the silver age, the attainments of that ईश्वरीय direction finish.
फिर मनुष्यों की मत मिलती है।
Then you receive the opinion of the human being.
तो नीचे उतरते हैं।
So you fall.
जिस मत से इतना ऊंच मर्तबा मिलता है,
द डायरेक्शन थ्रू विच यू रिसीव सच अ हाई पोजिशन,
इतना कह के किस तरफ इशारा किया?
टुवर्ड्स होम डिड बाबा हिंट सेइंग सो मच, इतना
इतना माने लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते।
इतना मीन्स He indicates the picture of Lakshmi Narayan.
जिस मत से इतना ऊंच मर्तबा मिलता है उस मत पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं।
The direction through which you receive such a high position, children don't pay attention to it.
और मनुष्यों की मत पर देखो कितना ध्यान देते हैं।
And look, they pay so much of attention to the opinion of human beings.
मनुष्य गुरुओं की मत पर ध्यान देते हैं।
They pay attention to human guru's opinion.
मुरली जो मिस की है वो फिर सुनना चाहिए।
The मुरली you have missed, you should listen to it.
कारण या कारण मिस हो जाती है तो मुरली जरूर सुनना चाहिए। ईश्वर का परिवार बिल्कुल सिंपल है।
For some or the other reason, if you miss the movie, you should definitely listen to it. God's family is very simple.
क्या सिंपल है?
What is simple?
ईश्वरीय परिवार में कौन कौन है?
Who all are present in God's family?
लंबे चौड़े संबंध नहीं है।
देर आर एंड लॉट्स ऑफ रिलेशन।
क्या है? बाप बच्चे और बच्चियां।
हु आर देयर? द फादर सन्स एंड डॉटर्स।
बाकी जो भी संबंध हैं, उनको तोड़ना पड़ता है।
यू हैव टू ब्रेक ऑल द रेस्ट ऑफ द रिलेशन।
कब?
व्हेन?
इस संगम युग में।
इन दिस कॉन्फ्लुएंस एज।
पड़ता है क्यों?
Why was it said you have to?
कोई जबरदस्ती है क्या?
Is it a compulsion?
है? और संबंधों को जो और मनुष्यों के साथ जुड़े हुए हैं जन्म जन्मांतर की और खास इस जन्म में देखने में आते हैं, कोई न तोड़ना चाहे तो?
What if someone doesn't wish to break the other relations that are connected with other human beings for many births and especially the relations which are visible in this birth?
Compulsion है?
Is it a compulsion?
हाँ।
Yes.
ऐसी ऐसी स्थितियां पर स्थितियां आती जाएंगी कि वो सब संबंध तोड़ने पड़ेंगे।
Such circumstances will keep coming that you will have to break all those relations.
एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
One शिव बाबा and no one else.
अंत में सब समझते जावेंगे कि सारी दुनिया झूठी और एक बाप सच्चा।
In the end, everyone will keep realizing that the entire world is false. And the one father is true.
इसलिए बोला कि बाकी जो भी संबंध है सब तोड़ने पड़ते हैं।
This is why it was said, you have to break all the other relations.
तो देह और देह के संबंध जो पहले तोड़ लेंगे बुद्धि योग से, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाएंगे, वो ज्यादा फायदे में रहेंगे, या बाद में तोड़ने पड़ेंगे लाजमी? स्थिति परिस्थिति विकराल होने के कारण वो ज्यादा ऊंच पद पावेंगे।
Those who break the connection of their intellect with the body and the relations of the body first, those who become nashto moha smriti labdha first, will they be benefited more? Or those who have to compulsorily break it later due to the situations and circumstances become fearsome, will they achieve a high position?
बाद में मजबूरी से तोड़ेंगे और जो पहले ही मुरली सुन करके धारण कर लेंगे और बुद्धि योग से पहले ही तोड़ देंगे, फायदा किसको होगा?
Those who break it later out of compulsion and those who listen to the murli and assimilate it before itself and break the connection of their intellect from it in the beginning itself, between both categories who will be at an advantage?
जो जितना जल्दी नष्टो मोहा बनेगा उतना जल्दी उतना ही ऊंच पद प्राप्त करेगा।
The earlier someone becomes नष्टो मोहा, he will attain a higher position early to that extent.
शादी करने से और ही संबंध बढ़ जाता है।
The relationships increase all the more by getting married.
अभी तोड़ने का समय है या जोड़ने का समय है? नए नए संबंध।
Now is it the time to break the relations or to build new relations?
तोड़ने के टाइम पर अगर कोई जोड़ता जाए तो देह के संबंधों में और ही बढ़ोतरी कर ली।
at the time of breaking the relations, if someone keeps forming them, he increased the number of his bodily relations all the more.
फिर ससुर घर भी याद आने लग पड़ेगा.
Then he will also start remembering his in-laws' house.
मित्र, संबंधी, नाते, गोते सब याद आने लग पड़ेंगे.
He will start remembering friends, relatives and all of them.
और यहाँ तो सबको भूलना है.
And here you have to forget everyone.
सिर्फ ईश्वरीय संबंध है.
There is just the ईश्वरीय relation.
क्या है ईश्वरीय संबंध?
What is the ईश्वरीय relation?
बाप और आपस में भाई बहन.
The relationship of the father and the mutual relation of brother and sister.
और सब देह सहित देह के सब संबंध भुलाने.
Forget all the relations of the body along with the body.
बाबा को तो संबंध आदि की याद भी नहीं है.
बाबा doesn't even remember his relatives and so on.
कौन से सन की वाणी है?
It is the वाणी of which year?
67 की.
It is of 1967.
देह सहित देह के सर्व संबंध तोड़ने हैं.
यू हैव टू ब्रेक ऑल द रिलेशंस ऑफ द बॉडी अलोंग विद द बॉडी.
रावण राज्य में संबंध का बहुत परिवार होता है.
देर आर मेनी रिलेटिव इन अ फैमिली इन द किंगडम ऑफ रावण.
कितना घमासान होता है संबंधों को. नाना, चाचा, काका, ताऊ, ये वो.
There is such a commotion of the relatives. Maternal grandfather, father's younger brother, father's elder brother, this one, that one.
अभी उन बहुत संबंधों को तोड़ना है और देह भी पुरानी है.
Now you have to break those many relations and the body is also old.
एक संग जोड़ना है तो ऊंच पद पा सकते हैं.
इफ यू बी इन द कंपनी ऑफ द वन यू कैन अटेन अ हाई पोजिशन.
अगर अनेकों के साथ संबंध जुड़े रहे अंत तक तो लंबे समय की क्या प्रैक्टिस पड़ गई.
इफ यू स्टे अटैच टू द रिलेशन विद मेनी टिल द एंड What did you practice for a long period?
Nashto moha smriti labdha ki practice hui kya?
Did you practice being nashto moha smriti labdha?
Nahi hui.
You didn't.
To unch pad kaise paavenge?
Then how will you attain a high position?
Sambandh hoga to ant mein wo hi yaad aa jayega.
If there is any relation, you will remember that itself in the end.
Antamate sogati.
As is the last thought, so is the destination.
Baba poochte hain. Narayani nasha chada hua hai.
Baba asks, Are you in Narayani nasha? Meaning, The intoxication of Narayan.
अगर नारायण ही नशा चढ़ा हुआ है तो ऊंच पद पा सकते हैं.
If you remain in Narayani nasha, you can attain a high position.
मौत तो सदैव ही सिर पर है.
Death is certainly always near.
सड़क चलते चलते हादसा हो जाता है. पता नहीं कब शरीर से छूट जावे.
इवन बाय वॉकिंग ऑन अ रोड एन एक्सीडेंट सडनली टेक्स प्लेस. यू नेवर नो व्हेन यू माइट लीव द बॉडी.
दिन प्रतिदिन संबंध तोड़ना है.
यू हैव टू ब्रेक द रिलेशन डे बाय डे.
जो ज्ञान में चलते हैं वो बड़े खबरदार रहते हैं.
दोज़ हू फॉलो द नॉलेज आर वेरी केयरफुल.
अगर ज्ञान में चलते हैं तो
इट इज ओनली इफ दे फॉलो द नॉलेज.
देह सहित संन्यास, सन्यासी लोग तो कर नहीं सकते.
रिनन्सिएशन अलोंग विद द बॉडी द सन्यासी सर्टेनली कांट डू इट.
क्यों?
व्हाई?
देह सहित देह के संबंधों का सन्यास वो सन्यासी लोग क्यों नहीं कर सकते?
व्हाई कांट दोज सन्यासी रिनाउंस द रिलेशंस ऑफ द बॉडी अलोंग विद देयर बॉडी?
क्योंकि उन्होंने हठपूर्वक देह के संबंधों को त्यागा है.
इट इज बिकॉज दे हैव रिनाउंस्ड द रिलेशंस ऑफ द बॉडी स्टबर्नली.
और हम?
एंड व्हाट अबाउट अस?
हम बाप से प्रीति जोड़ते हैं.
वी हैव अ कनेक्शन ऑफ लव विद द फादर.
इसमें हठयोग की बात ही नहीं.
देयर इजंट एनी क्वेश्चन ऑफ हठयोग हियर एट ऑल.
एक तरफ जुटेगा और जितना जास्ती जुटता जाएगा उतना औरों की तरफ से स्वतः ही टूटता जाएगा.
ऑन वन हैंड यू विल हैव अ कनेक्शन ऑफ लव विद द फादर एंड द मोर दिस कनेक्शन स्ट्रेंथन्स इट विल ऑटोमेटिकली ब्रेक फ्रॉम द अदर टू दैट एक्सटेंट.
तो उन सन्यासियों के लिए कायदा नहीं है.
So it isn't a law for those sannyasis.
Kya?
What?
Un sannyasiyon ke liye kaida nahi hai ki wo raj yog seekh sake.
It isn't a law for those sannyasis to learn raj yog.
Unko is prakar ka gyan milta hi nahi hai.
They just don't receive this kind of knowledge.
सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई में ही ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है.
अदर देन यू ब्राह्मण नोबडी हैज दिस ईश्वरीय नॉलेज.
तुम ब्राह्मणों की लिस्ट में कौन कौन से ब्राह्मण हैं?
हु आर द ब्राह्मण्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यू ब्राह्मण्स?
ब्राह्मणों की भी नौ कुड़ियां हैं.
देयर आर नाइन कैटेगरीज ऑफ ब्राह्मण्स टू.
तुम ब्राह्मण किन से कहा है?
फॉर हुम वॉज इट सेड यू ब्राह्मण?
जो अव्वल नंबर कुरी के हैं उनसे कहा तुम ब्राह्मण, क्योंकि वो आदि से लेकर अंत तक बाप के सन्मुख रहने करके पार्ट बजाने वाले हैं.
दोज हू बिलोंग टू द नंबर वन कैटेगरी दे वर एड्रेस्ड एज यू ब्राह्मण बिकॉज फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड They play a part of being sannmukh with the father.
तो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वो और कोई में नहीं है.
So the knowledge that you have, nobody else has it.
कितने बड़े बड़े गवर्नर प्रेसिडेंट आदि हैं.
There are such big governors, presidents and so on.
कोई तो ऐसे भी हैं जो अपन को नारायण कहलाते हैं.
Some are even such who call themselves Narayan.
बाप कहते हैं जो अपन को भगवान कहलाते हैं वो हिरण्यकश्यप हैं.
The father says those who call themselves God are Hiranyakashyap.
तुम बच्चे मास्टर मैसेंजर व पैगंबर बने हो.
You children have become master messengers.
बाप का मैसेज देना तुम्हारा काम है.
इट इज योर ड्यूटी टू गिव द फादर्स मैसेज.
मैसेज लेने वालों में जो अपने कुल का होगा उसकी पहचान क्या होगी?
अमंग दोज हू टेक द मैसेज व्हाट विल बी द रिकॉग्निशन ऑफ द वन हु इज ऑफ आवर क्लैन?
कैसे समझेंगी ये हमारे कुल का है?
हाउ विल यू अंडरस्टैंड ईज ऑफ आर क्लैन?
थोड़ा सा सुना देंगे वो झट समझ जाएगा, खिंच जाएगा.
If you narrate even a little, he will immediately understand it. He will be pulled towards it.
जन्म जन्मांतर का सूर्यवंशी कुल का है, सूर्य से कनेक्शन रखने वाला है, राम की आत्मा से कनेक्शन रखने वाला है, तो पूर्व जन्मों का वो हिसाब किताब उसको झट खींच लेगा।
If he is of the Suryavanshi clan for many births, if he has a connection with the sun, if he has a connection with the soul of Ram, those karmic accounts of his previous birth will immediately pull him.
बाप के पास जाना है तो बेहद के बाप को याद करो।
If you want to go to the father, remember the unlimited father.
तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे।
Then you will become the master of the pure world.
पूछना चाहिए, क्या चाहते हो?
You should ask them, what do you want?
मुक्ति चाहते हो या जीवन मुक्ति चाहते हो?
Do you want liberation or liberation in life?
बाकी मोक्ष तो होता नहीं।
As for the rest, you certainly don't attain moksh.
मोक्ष का अर्थ लगाते हैं सदा काल के लिए मुक्ति, इस दुनिया में कभी आवे ही नहीं।
They think the meaning of moksha is liberation forever. It means he should never come in this world.
अब तुमको क्या चाहिए? सदा काल के लिए मुक्ति चाहिए या थोड़े समय के लिए इस दुनिया से मुक्ति और बाकी जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति चाहिए? तुम्हारी आत्मा की आवाज क्या है?
Now what do you want? Do you want liberation forever or do you want liberation for a while from this world and for the rest of the time you want liberation from sorrow and pain while being alive? What does the voice of your soul say?
ये तो पूछा जाता है ना?
This is asked, isn't it?
सन्यासियों से तो पूछना ही व्यर्थ है।
It is just futile to ask the sannyasis.
वो तो अपनी हट के पक्के हैं, हमें ये संसार नहीं चाहिए।
They are firm in their obstinacy. We don't want this world.
और कहेंगे तो कहेंगे कि स्वर्ग के सुख कागबिस का समान। वो भी नहीं चाहिए।
If they say anything more, they will say, the happiness of heaven is equal to the droppings of a crow. We don't want that either.
अभी देखो भारत में भगवान बहुत हो गए हैं।
Now look, there are many gods in Bharat.
मना?
What does it mean?
बाबा क्या कहना चाहते हैं?
What does Baba want to say?
भगवान एक होता है या बहुत होते हैं, सर्वव्यापी होता है?
Is there one God or are there many? Is he omnipresent?
भगवान तो एक व्यापी होता है।
God is definitely present in one being, meaning एक व्यापी।
एक व्यापी ही बन करके आता है।
And he certainly comes becoming एक व्यापी।
एक व्यापी बन करके आवे तब तो सबकी बुद्धि एक में टिके।
When he comes being एक व्यापी, only then will everyone's intellect stabilize in the one.
सर्वव्यापी बन के आवेगा तो क्या होगा?
If he comes becoming omnipresent, what will happen?
बुद्धि बिखर जावेगी या एक चिक हो जावेगी?
Will the intellect scatter or will it stabilize in the one?
बिखर जावेगी?
It will scatter.
ये तो बच्चे समझते हैं। अभी टाइम बहुत पड़ा है।
So children certainly understand. Now a lot of time is left.
किस बात में?
For what?
सर्वव्यापी बदल करके सारी दुनिया की बुद्धि में एक व्यापी हो जाए, ये समझने में अभी टाइम बहुत पड़ा है.
For the concept of omnipresence to change and for the entire world to understand that he is ek vyapi, there is a lot of time left.
बच्चे समझते हैं, 8-9 वर्ष तो हैं ही.
Children think 8-9 years are certainly left.
8-9 वर्ष में क्या होगा?
What will happen in 8-9 years?
हैं? जो सारी दुनिया की बुद्धि में बैठा हुआ है कि भगवान सर्वव्यापी है.
It has sat in the intellect of everyone in the world that God is omnipresent.
वो बैठना शुरू हो जाएगा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है.
So it will start to sit in their intellect that God isn't omnipresent, he is ek vyapi.
परंतु ये संदेश बहुतों को देना है.
But you have to give this message to many.
ऐसे नहीं एक की बुद्धि में बैठ जाए क्या?
It shouldn't be that it just sits in the intellect of one and that's enough. What?
कि भगवान एक व्यापी है, एक ही मुकर्रर रख है, तो कल्याण हो जाएगा?
It isn't that welfare will be brought about if it sits in the intellect of only one, that God is ek vyapi, that he has just one permanent chariot.
क्या करना है? ये बात बहुतों की बुद्धि में बैठे, अनेकों को संदेश मिले.
What should you do? This topic should sit in the intellect of many. Many should receive this message.
संदेश तो देना है ना?
You surely have to give the message, don't you?
ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना है.
You have to give the introduction of the highest of the high father.
नीचे ऊंचे और नीचे नीचे.
What does highest of the high and lowest of the low mean?
धर्म पिताएं होते हैं ना?
There are religious fathers, aren't there?
कोई धर्म पिताएं पहले आए, कोई धर्म पिताएं बाद में आए.
Some religious fathers came earlier, while some came later.
कोई उत्तरोत्तर श्रेष्ठ युग में आए और कोई उत्तरोत्तर नीचे युग में आए.
Some came in a successively elevated age, while some came in a successively degraded age.
तो जैसे टाइम पर जिनकी पैदाइश होती है उतने ही तो ऊंचा कार्य करने वाले होंगे.
So the time someone is born, he will perform elevated task only to that extent.
तुमको तो ऊंचे से ऊंचे बाप का परिचय देना है.
In fact, you have to give the introduction of the highest of the high father.
ऊंचे से ऊंचे युग कौन सा है?
Which is the highest age?
सतयुग है. समझते हैं बहुत ऊंचा युग है.
They think the golden age is a very elevated age.
लेकिन वहाँ भगवान तो होता ही नहीं. किसी को पहचान होती है भगवान की? नहीं.
But God isn't present there at all. Does anyone recognize God there? No.
हाँ, सतयुग की स्थापना करने वाला सतयुग से पहले होगा या सतयुग में होगा?
But yes, will the one who establishes the golden age be before the golden age or in the golden age?
सतयुग से पहले होता है.
He is present before the golden age.
तो सतयुग से जो पहले का युग है जिसमें बाप भगवान आते हैं वो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग.
So the age that is present before the golden age, in which God the Father comes, is the most elevated age, that is the Purushottam confluence age.
यहाँ बाप आकर पुरुष अर्थात आत्माओं को नंबर वार उत्तम उत्तम डिक्लेयर करते हैं.
After coming here, the father declares the best पुरुष meaning the soul number wise.
तो ऐसे ऊंचे से ऊंच बाप का परिचय देना है.
So you have to give the introduction of the highest of the high father.
ऐसा ऊंच कार्य और दुनिया में कोई धर्म पिता कर ही नहीं सका.
नो रिलीजियस फादर इन द वर्ल्ड कुड परफॉर्म सच एन एलिवेटेड टास्क.
ये नीच से नीचे हिरण्यकश्यप आदि तो तब लिखा है जब थंब से निकल भगवान ने मारा.
दी स्टोरीज ऑफ द लोएस्ट ऑफ द लो हिरण्यकश्यप एंड सो ऑन आर रिटन व्हेन गॉड इमर्ज्ड फ्रॉम अ पिलर And killed him.
थंब क्या है?
What is a killer?
ये शरीर ही खंभे मिसल है.
This body itself is like a pillar.
जिस तन में मुकर्रर रथ में भगवान बाप प्रवेश करते हैं गुप्त रूप में, वो गुप्त बाप जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो ये हिरण्यकश्यप साफ खलास हो जाते.
The body, that is the permanent chariot which God the Father enters in a hidden form, when that hidden father is revealed in the world, all these हिरण्यकश्यप are destroyed.
समझते हैं पेट चीर कर मारा.
They believe God tore open his stomach and killed him.
भगवान क्या हिंसा करता है?
Does God commit violence?
हिंसा की तो बात ही नहीं.
There isn't any question of violence at all.
ये तो बुद्धि रूपी पेट की बात है.
Here, it is about the stomach-like intellect.
बुद्धि रूपी पेट में उन हिरण्यकश्यपों के इतना दर्द होता है, टेंशन बढ़ता है कि वो कोई बात का जवाब पब्लिक को नहीं दे पाते.
Those हिरण्यकश्यप suffer so much of pain in their stomach-like intellect. Their tension increases so much that they aren't able to answer any of the public's questions.
तो शास्त्रों में लिख दिया है थंब से निकला कौन सा रूप धारण करके.
So it is written in the scriptures, he came out of a pillar, which form did he take?
नर के रूप में सिंह का रूप धारण करके निकला.
He took the form of a lion and came out.
जैसे जंगल में शेर की आवाज सारे जंगल को जहर दहलाए देती है.
Just like in the jungle, the sound of a lion fills the entire jungle with terror.
ऐसे ही बाप भी इस संसार रूपी जंगल में सिंह रूप बन करके प्रत्यक्ष होता है.
Likewise, even the father is revealed as the form of a lion in this jungle-like world.
जिसकी बातों का जिसकी दहाड़ का सारे संसार में कोई के पास जवाब नहीं होता.
Nobody in the entire world has any answer to his words or his roar.
बाकी भगवान कैसे हिंसा करेंगे कि कोई का पेड़ फाड़ेंगे, ये तो सब गपोड़े लिख दिए हैं.
As for the rest, how can God commit violence that he tears open someone's stomach? People have written all these gossips.
काहे में? शास्त्रों में.
वेर इन द स्क्रिप्चर्स.
अब ये ब्लाइंड फेथ कितना है?
नाउ देयर इज सो मच ऑफ ब्लाइंड फेथ.
गुरु जी ने सुनाया कि सत्ययुग में हिरण्यकश्यप का राज्य था तो सत्य वचन महाराज.
some Guruji narrated that there was the kingdom of Hiranyakashyap in the golden age. Those who listen start saying, that is true, sir.
अरे जब सत्य का युग है तो वहाँ श्रेष्ठ होंगे या राक्षस होंगे?
अरे when it is the age of truth, will there be elevated ones or demons present there?
श्रेष्ठ ही होंगे?
Certainly, there will be only the elevated ones there.
फिर बताते हैं पेट फाड़ा भगवान ने?
Then they say, God tore open his stomach.
अरे भगवान आकर के हिंसा सिखावेगा?
अरे विल गॉड कम एंड टीच वायलेंस?
आज के साधारण गुरु भी प्रवचन देते हैं तो ये सिखाते हैं कि कोई की हिंसा करो, मारो, हत्या करो?
इवन व्हेन टुडेज ऑर्डिनरी गुरु डिलीवर प्रवचन मीनिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, डू दे टीच पीपल टू इंडल्ज इन वायलेंस, बीट और किल समवन?
इन शास्त्रों के सही अर्थ भगवान बाप ही आकर के सिखाते हैं।
इट इज ओनली गॉड द फादर हु कम्स एंड टीचेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ दी स्क्रिप्चर्स।
जैसे वो पेट है, उस पेट में कोई बात पचाई जाती है।
जस्ट लाइक देयर इज दैट फिजिकल स्टमक, समथिंग इज डाइजेस्टेड इन दैट स्टमक।
ये बुद्धि रूपी पेट है।
Here it is about the stomach like intellect.
उस पेट में भोजन पचाया जाता है।
Food is digested in that stomach.
और बुद्धि रूपी पेट में कोई ज्ञान की बातें पचाई जाती
है। And in the stomach like intellect, some topics of knowledge are grasped.
गणेश का पेट कितना बड़ा दिखाते हैं।
They show the stomach of Ganesh so big.
भीम का पेट कितना बड़ा दिखाते हैं।
दे शो द स्टमक ऑफ भीम सो बिग।
क्यों दिखाया है?
वाई हैव दे शोन इट बिग?
बुद्ध रूपी पेट कैसे विशाल होता है ये दिखाने के लिए दिखाया है, नहीं तो बुद्धि तो सूक्ष्म।
इन ऑर्डर टू शो हाउ ब्रॉड द स्टमक लाइक इंटेलेक्ट इज, दे हैव शोन इट इन अ फिजिकल फॉर्म। Otherwise, the intellect is in fact subtle.
इसकी बुद्धि बड़ी है, ये कैसे दिखावे?
How can someone show that his intellect is broad?
भारत में भगवान ढेर के ढेर हो गए।
Many have become God in Bharat.
जो मन में आया तो अगड़म बगड़म सुनाते रहते हैं और भक्त ब्लाइंड फेथ करते रहते हैं।
वॉट एवर कम्स इन देयर माइंड दे कीप नरेटिंग दोज वर्थलेस टॉपिक्स एंड द डिवोटीज कीप बिलीविंग देम ब्लाइंडली।
भक्ति मार्ग की तो कमाल है।
इट इज अ वंडर ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति।
और उनके फॉलोअर्स करोड़ों की तादाद में।
एंड देयर आर मिलियंस ऑफ देयर फॉलोअर्स।
क्या?
व्हाट?
भगवान बाप आते हैं तो थोड़े थोड़े बच्चों के ग्रुप बना के उनको पढ़ाई पढ़ाते हैं।
When God the Father comes, he makes groups of a few children and teaches them.
क्या? और जो बड़े बड़े गुरु होते हैं वो लाखों का मजमा इकट्ठा करते हैं और बड़े बड़े माइक लगा के, लाउड स्पीकर लगा के उनके पास आवाज पहुंचाते हैं।
वॉट? एंड दोज हु आर द बिग गुरु दे गैदर अ क्राउड ऑफ हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड दे मेक देयर वॉइस रीच द पीपल इंस्टॉलिंग वेरी बिग माइक एंड लाउड स्पीकर्स।
तो देखो तुम बच्चे कितने थोड़े हो जिनकी यादगार है पांच पांडव।
सो लुक यू चिल्ड्रन हुज यादगार इज ऑफ द फाइव पांडवास आर सो फ्यू।
पांच उंगलियां हैं, मुट्ठी में बंद कर लो।
देयर आर फाइव फिंगर्स, क्लोज इट इन द फिस्ट।
तुम हो मुट्ठी भर बच्चे और वो हैं करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स।
यू आर अ फिस्ट फुल ऑफ चिल्ड्रन एंड दोज फॉलोअर्स आर इन मिलियंस।
आगे चल करके दिन प्रतिदिन बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे.
इन फ्यूचर डे बाय डे मेनी विल कीप हैविंग विजन्स.
किस बात के?
ऑफ व्हाट?
हैं? कि ऊंचे से ऊंच बाप हमको मिला है, अब आया हुआ है. ये साक्षात्कार होते रहेंगे. इनकी भी अवस्था बढ़ती जाएगी.
They will keep having these visions. We have found the highest of the high father. He has come now. This one's inky stage will also improve.
Kiniki? इनकी कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा दिया?
Towards whom did he hint when he said इनकी?
ना, उनकी अवस्था है, वो तो बड़े हुए अवस्था वाले ही हैं. बढ़ती जाएगी क्या?
Student commented, no. What about his stage? He is already the one with the high stage. There isn't any question of it improving any more.
दो तरह के साक्षात्कार होते हैं, एक बुद्धि का साक्षात्कार और एक बंद आंखों का साक्षात्कार.
स्टूडेंट द एडवांस पार्टी विजन्स. देर आर टू काइंड ऑफ विजन्स. वन इज हैविंग विजन्स थ्रू द इंटेलेक्ट एंड द अदर इज हैविंग विजन्स थ्रू क्लोज आइज.
भक्तों को कौन से साक्षात्कार होते हैं? बंद आंखों के साक्षात्कार होते हैं.
विच विजन्स डू द डिवोटीज हैव? दे हैव द विजन्स ऑफ क्लोज्ड आईज.
और बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों को कौन से साक्षात्कार होते हैं?
एंड विच विजन्स डू द इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफ द इंटेलिजेंट फादर हैव?
बुद्धि के साक्षात, बुद्धि माने समझ की बात.
दे हैव द विजन्स ऑफ इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट मीन्स इट इज अबाउट विजडम.
तो इनकी भी अवस्था बढ़ती जाएगी. किनकी?
सो दिस वन स्टेज विल ऑल्सो इम्प्रूव. हूज?
इनकी कह करके दो आत्माओं की तरफ इशारा किया.
बाई सेइंग इनकी ही हिंटेड एट टू सोल्स.
राम और कृष्ण.
राम एंड कृष्ण
यही तो रथ हैं.
These ones themselves are his chariot.
एक टेम्पररी रथ और एक मुकर्रर रथ.
वन इज द टेम्पररी चैरियट एंड द अदर इज द परमानेंट चैरियट.
अभी अवस्था इनकी बढ़ी हुई नहीं है, आगे चल करके इनकी भी अवस्था बढ़ती जाएगी.
नाउ देयर स्टेज हैजंट बिकम एलिवेटेड. लेटर इवन देयर स्टेज विल कीप बिकमिंग एलिवेटेड.
दिन प्रतिदिन बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे. आज में भी क्या हुआ?
डे बाय डे मेनी विल कीप हैविंग विजन्स. व्हाट हैपेंड इवन इन द बिगनिंग?
वृद्धतन को देखते थे, कृष्ण का साक्षात्कार होता था.
दे यूज्ड टू सी द ओल्ड बॉडी, देन दे यूज्ड टू हैव द विजन ऑफ कृष्ण.
कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार करते थे.
दे यूज टू हैव द विजन ऑफ चाइल्ड कृष्ण.
अंत में बाप का साक्षात्कार करेंगे.
इन द एंड दे विल हैव द विजन ऑफ द फादर.
कर्मातीत अवस्था का पता पड़ जाएगा.
यू विल कम टू नो व्हाट इज द कर्मातीत स्टेज.
क्या?
व्हाट?
कि कर्मों से अतीत अवस्था क्या होती है.
यू विल रियलाइज हाउ द स्टेज बियॉन्ड एक्शन इज.
और कर्मों में लिम्पायमान अवस्था क्या होती है.
एंड हाउ द स्टेज बीइंग अटैच्ड टू एक्शन इज.
कर्मेंद्रियां तो होती है ना.
देयर आर सर्टेनली द कर्मेंद्रियां. आरंट देयर?
कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो उन कर्मों का असर तो होता ही है.
When you perform actions through the karmendriya, there is certainly a reaction of those actions.
फिर ऐसी स्टेज बन जाए कि कर्मेंद्रियों से कर्म भल होता रहे, परंतु उसका कोई लेपक्षेप आत्मा के ऊपर न पड़ने पाए.
Then you should attain such a stage that even though you perform actions through the karmendriya, but the soul shouldn't be affected by it at all.
सबको पता पड़ता जाएगा कि इनकी कर्मातीत अवस्था है.
Everyone will come to know this one has attained the karmatit stage.
वो सन्यासी लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, हमारा गुरु पार निर्वाण गया.
Those sannyasis simply say our guru went beyond nirvan.
अब इसका प्रूफ क्या है कि पार निर्वाण गया?
Now what is its proof that he went beyond nirvan?
वाणी से परे गया.
That is beyond speech.
वाणी से परे जाते हैं, यह शरीर छोड़ने के बाद इसी दुनिया में जन्म लेते हैं.
In reality, do they go beyond speech or are they born in this world itself after leaving their body?
दूसरी दुनिया है ही कहाँ जहाँ चले जाएंगे?
Where is the other world for them to go?
दुनिया में पाप बढ़ते जाते हैं या घटते जा रहे हैं?
Are sins increasing in the world or are they decreasing?
बढ़ते जाते हैं.
They keep increasing.
तो पाप बढ़ते जा रहे हैं, पाप की दुनिया में रहने वालों के पाप नहीं बढ़ेंगे?
So if sins are increasing, won't the sins of the people who live in the sinful world increase?
तो नई दुनिया में कहाँ से पहुँच जाएंगे?
Then how will they reach the new world?
तो सबको कर्मातीत अवस्था का पता पड़ता जाएगा.
So everyone will come to know about the karmatit stage.
कि कौन कौन की कर्मातीत अवस्था हो रही है.
They will realize who are attaining the karmatit stage.
फिर ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होगा.
Then many will have the visions of Brahma as well.
योग बल बढ़ता जाएगा ना?
योग बल विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, वोंट इट?
तो जितना जितना योग बल बढ़ता जाएगा, उतना उतना बहुतों को बुद्धि में आता जाएगा.
द एक्सटेंट टू विच योर योग बल इंक्रीज, मेनी विल रियलाइज इट थ्रू देयर इंटेलेक्ट टू दैट एक्सटेंट.
ये बहुत गुह्य राज हैं ज्ञान के.
दीज आर वेरी डीप सीक्रेट्स ऑफ नॉलेज.
लिखा हुआ भी है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम.
इट इज ऑल्सो रिटन, इट इज द डीपेस्ट नॉलेज, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम.
भगवान आते हैं तो कैसा ज्ञान सुनाते हैं?
When God comes, what kind of knowledge does he narrate?
गुह्य ज्ञान नहीं सुनाते, गुह्य से भी गुह्य राज सुनाते. क्या मतलब?
He doesn't narrate just deep knowledge. He narrates the deepest secret. What does it mean?
दुनिया में जो ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं, वो तो अंधश्रद्धा की बातें.
The topics of knowledge that are narrated in the world are the topics of blind faith.
शास्त्रों की पुरानी पुरानी बातें.
Those are the old topics of the scriptures.
बाप आकर के कृष्ण के अंतिम चोले में गुह्य बातें तो सुनाते हैं ना?
द फादर कम्स एंड narrates डीप टॉपिक्स इन द लास्ट बॉडी ऑफ कृष्ण, doesn't he?
दुनिया कहती है भगवान सर्वव्यापी है.
द वर्ल्ड सेज गॉड इज ओनली प्रेजेंट.
अब ब्रह्मा के तन से क्या बोला?
एंड व्हाट डिड ही से थ्रू ब्रह्मास बॉडी?
भगवान एक व्यापी है.
गॉड इज एक व्यापी.
तो गुह्यता की बात तो सुनाई, लेकिन सुनने वालों ने कहाँ तक समझी और दूसरों को कहाँ तक समझाई, ये बात दूसरी.
सो ही डिड नरेट अ डीप टॉपिक, बट हाउ मच डिड द लिसनर्स अंडरस्टैंड इट एंड हाउ मच डिड दे एक्सप्लेन इट टू अदर्स इज अनदर थिंग.
फिर एडवांस राम बाप वाली आत्मा में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो और गुह्य राज समझाते हैं।
Then in the advanced knowledge, when he is revealed in the form of the father through the body of the soul of the father's arm, he explains all the more deep secrets.
Basic में सिर्फ इतना ही पता था क्या?
In the basic knowledge, you just knew this much. What?
कि भगवान व्याप सर्वव्यापी नहीं है, फिर क्या पता चलता?
God isn't omnipresent. Then what do you come to know in the advanced knowledge?
सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है?
If he isn't omnipresent, where is the ekvyapi form?
वो बेसिक में पता किसी को नहीं पड़ा।
Nobody came to know that in the basic knowledge.
क्या समझ लिए?
What did they understand?
कि ब्रह्मा के तन में ही एक व्यापी है।
They understood that he is ekvyapi just in the body of Brahma.
अगर ब्रह्मा के तन में ही एक व्यापी होता, मुकर्रर रूप से आया हुआ होता, तो ब्रह्मा का शरीर छूट जाता क्या?
Had he been ekvyapi just in the body of Brahma, had he come in a permanent form in him, then would Brahma have left his body?
छूट नहीं सकता?
He wouldn't have.
तो ये गुह्य तेरा गुह्य राज में तुम बच्चों को समझाता हूँ।
So I explain these deepest secrets to you children.
मुसलामी बौद्धि क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो भी ब्राह्मण हैं, उनको ये गुह्य राज नहीं समझाता।
I don't explain these deep secrets to the Brahmins who convert to the Islam, Buddhist, Christian religion, etc.
फिर ब्रह्मा का नाम कम थोड़े ही है। भक्ति मार्ग में तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं।
ब्रह्मा isn't any less famous. In the path of bhakti, they say त्रिमूर्ति ब्रह्मा।
बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा की तीन मूर्तियां चित्रों में दिखाई दी।
Even in the basic knowledge, they have shown three personalities of Brahma in the picture.
जिस त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है उसमें फीचर किसका दिखाई दिया?
The picture of त्रिमूर्ति that is made, whose features they have shown in it?
ब्रह्मा का जो फीचर है, चेहरा है, वही विष्णु का चेहरा दिखाई दिया, वही शंकर का चेहरा दिखाई दिया।
The features that is the face Brahma has, they have shown the same face to Vishnu as well as Shankar.
सिर्फ मुंह चाटा दी।
They have just removed the mustache.
चेहरा तो वही दिखाई दिया।
But have shown the same face.
तो भक्ति मार्ग की बात हुई या ज्ञान मार्ग की बात हुई?
So was this the topic of the path of bhakti or the topic of the path of knowledge?
ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई।
This was in fact the topic of the path of bhakti.
भगवान बाप कृष्ण वाली आत्माओं के तन के द्वारा त्रिमूर्ति शिव के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होते।
God the Father isn't revealed in the form of Trimurti Shiv through the body of Krishna.
तो ब्रह्मा त्रिमूर्ति नहीं है।
So Brahma isn't Trimurti.
ब्रह्मा की तीन मूर्तियां नहीं है।
The three personalities aren't of Brahma.
किसकी तीन मूर्तियां हैं?
Whose are the three personalities?
शिव की तीन मूर्तियां।
They are the three personalities of Shiv.
वो तीनों ही मूर्तियां।
All those three personalities.
शिव कल्याणकारी है या कल्याणकारी?
Is Shiv beneficial or is he harmful?
कल्याणकारी है।
He is beneficial.
तो वो तीनों ही मूर्तियां जो वास्तव में हैं, जिनके लिए बोला तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए।
So all those three personalities who are present in reality, for whom it was said, you children should make an accurate picture of the Trimurti.
ये एक्यूरेट चित्र नहीं है जो बनाया है.
द पिक्चर दैट इज मेड इजंट एक्यूरेट.
इसमें दादा लेखराज के ही तीनों फीचर रख दिए.
दे हैव शोन जस्ट द फीचर्स ऑफ दादा लेखराज फॉर ऑल द थ्री.
क्यों नहीं है एक्यूरेट?
Why isn't it accurate?
क्योंकि ये तो भक्ति मार्ग वाले जैसे कृष्ण का नाम डाल देते हैं गीता में. गीता का भगवान कृष्ण बच्चे को बनाए देते हैं. ऐसे ही यहाँ बेसिक नॉलेज में भी क्या किया है, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज का चेहरा तीनों चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में डाल दिया.
बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक द पीपल ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति हु पुट द नेम ऑफ कृष्ण इन द गीता. दे मेक द चाइल्ड कृष्ण गॉड ऑफ द गीता. लाइकवाइज इवन हियर इन द बेसिक नॉलेज व्हाट हैव दे डन. दे हैव शोन द फेस ऑफ कृष्ण अलियास दादा लेखराज इन ऑल द थ्री पिक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर.
ये रंग है चित्र.
दिस इज अ रॉन्ग पिक्चर.
यथार्थ चित्र नहीं है.
दिस इज इंट एन एक्यूरेट पिक्चर. मीनिंग यथार्थ लिटरली मीन्स इन अकॉर्डिंग विद द मीनिंग.
तुमको तो त्रिमूर्ति शिव का चित्र डालना चाहिए.
यू शुड इन फैक्ट शो द पिक्चर ऑफ त्रिमूर्ति शिव.
त्रिमूर्ति शिव.
त्रिमूर्ति शिव.
हाँ ब्रह्मा का पार्ट जास्ती है.
यस द पार्ट ऑफ ब्रह्मा इज सर्टेनली लॉन्गर.
आदि में भी ब्रह्मा का पार्ट, फिर शंकर के रूप में पार्ट बजाते हैं तो भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है. फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनता है तो वो भी एक ही होगी या ब्रह्मा सो विष्णु.
इन द बिगनिंग ऑल्सो देयर इज द रोल ऑफ ब्रह्मा. Then he plays a role in the form of Shankar. Even then the soul of Brahma enters him and plays a role. Then Brahma becomes Vishnu. So he also became the same, that is Brahma so Vishnu.
तो भी ब्रह्मा की सोल पार्ट बजाती है.
Even then the soul of Brahma plays a role.
तो सोल पार्ट बजाती है, बाकी मूर्ति मूर्ति ब्रह्मा की नहीं है.
It is the soul who plays a role. As for the rest, the personality isn't of Brahma.
इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाते, मंदिर नहीं बनाते हैं, पूजा नहीं करते हैं.
This is why in the path of bhakti, they neither make an idol of Brahma, nor do they make his temple, nor do they worship him.
मनुष्य शंकर को ऊंचे रखते हैं.
ह्यूमन बींग्स कंसिडर शंकर टू बी हाई.
तुम किसको ऊंचे रखते हैं रखेंगे?
हु विल यू कंसिडर टू बी हाई?
तुम शिव को ऊंचे रखेंगे?
यू विल कंसिडर शिव टू बी हाई.
मनुष्य शंकर को ऊंचे रखते हैं.
ह्यूमन बींग्स कंसिडर शंकर टू बी हाई.
फर्क क्या हुआ?
व्हाट इज द डिफरेंस?
तुम्हारी बुद्धि में शिव कहने से रूप किसका आवेगा?
हुज फॉर्म विल कम टू योर इंटेलेक्ट बाय सेइंग शिव?
बिना राम रूप के कोई चीज होती है दुनिया में?
Is there anything in the world without a name and form?
नाम रूप बगैर तो कोई होता नहीं.
There isn't anyone without a name and a form.
तो जब तुम कहेंगे शिव तो तुम्हारी बुद्धि में रूप किसका आवेगा?
So when you say शिव whose form will come to your intellect?
है? बिंदी. बिंदी तो जो विधर्मी धर्म पिताएं हैं उनकी बुद्धि में भी बिंदी आती है.
स्टूडेंट रिप्लाई अ पॉइंट द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट सर्टनली कम्स इन द इंटेलेक्ट ऑफ द विधर्मी रिलीजियस फादर्स एज वेल.
वो तो साकार को मानते ही नहीं.
इन फैक्ट दे डोंट बिलीव इन अ कॉर्पोरियल वन एट ऑल.
भले तुम साकार को देखेंगे परंतु साकार को देखते हुए भी तुम्हारी बुद्धि में ये रहेगा कि इसमें कार्य करने वाली कल्याणकारी आत्मा कौन है.
Though you see the corporeal one, in spite of seeing him, it will be in your intellect. Who is the beneficial soul who works in him?
शंकर है या शिव है? शिव है. तो तुम्हारी बुद्धि में शिव रहेगा.
Is it Shankar or Shiv? It is Shiv. So, Shiv will be in your intellect.
जैसे बाबा कहते थे ब्रह्मा की गोद में आते हो तो जिनकी बुद्धि में बैठा होगा. क्या हम ब्रह्मा की गोद में आते हैं तो फेल.
जस्ट लाइक बाबा यूज टू से व्हेन यू कम ऑन ब्रह्मास लैप दोज इन हूज इंटेलेक्ट इट सिट्स दैट दे कम ऑन द लैप ऑफ ब्रह्मा दे फेल.
अगर पूछे किसकी गोद में आए हो और कहता है कि शिव बाबा की गोद में आए तो पास.
इफ समवन आस्क्स ऑन हूज लैप हैव यू कम एंड ही सेज आई हैव कम ऑन शिव बाबाज लैप देन ही हैज पास्ड.
तो क्या अंतर पड़ गया?
सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक?
भावना का अंतर पड़ गया. ब्रह्मा वाली जो सोल है वो तो जन्म जन्मांतर खुद ही नीचे गिरती चली जाती.
देर इज द डिफरेंस इन द फीलिंग द सोल ऑफ ब्रह्मा हिमसेल्फ डिग्रेड्स बर्थ आफ्टर बर्थ.
क्यों ऊंची उठती है?
और डज ही राइज?
जन्म जन्मांतर नीचे गिरती गई या ऊंची उठी? नीचे गिरती है.
डिड ही कैप डिग्रेडिंग बर्थ आफ्टर बर्थ और डिड ही राइज हाई?
वो कैसे ऊंची उठाएगी?
हाउ कैन ही अपलिफ्ट अदर्स?
उसमें ऊंच उठाने वाला कौन है?
हु इज द वन टू अपलिफ्ट अदर्स इन हिम?
आत्मा है.
इट इज अ डिफरेंट सोल.
तो तुम जिस आत्मा की तरफ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन रहता है
सो The soul towards whom you are focused,
वो भाव की बात है.
It is about the feelings.
इसलिए कहते हैं भाव प्रधान विश्व रचि राखा. जिस भाव से जो काम किया जाता है वैसा ही उसका फल मिलता है.
This is why it is said, your world is created according to the feelings with which you perform deeds. The feelings with which a task is done, you receive a fruit accordingly.
तो मनुष्य शंकर को ऊंचे रख देते हैं और शिव शंकर को मिलाए देते हैं.
So the human beings consider Shankar to be high and they combine Shiv and Shankar.
क्यों?
Why?
शिव के साथ शंकर को मिलाए क्यों देते हैं?
Why do they combine Shankar alone with Shiv?
मिल सकता है क्या?
Can they combine?
शिव की आत्मा का पार्ट शंकर की आत्मा के साथ मिल सकता है क्या?
Can the part of Shiv be mixed with the part of Shankar?
मिल सकता है.
Can it be mixed?
अरे
अरे
शिव सदैव असोचिता और शंकर सूक्ष्म शरीरदारी दिखाया जाता है. मनन चिंतन मंथन में दिखाया जाता है.
शिव इज ऑलवेज द वन हु इज फ्री फ्रॉम थॉट्स असोचिता एंड शंकर इज शोन एज अ सटल बॉडीड बीइंग. ही इज शोन इन अ स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड जर्निंग.
तो शिव का पार्ट अलग और शंकर का पार्ट अलग.
सो द रोल ऑफ शिव एंड द रोल ऑफ शंकर आर डिफरेंट.
दोनों को मिलाने का तो कोई मतलब ही नहीं.
देयर इज नो पॉइंट इन कंबाइनिंग देम.
परंतु भक्तों ने स्थूल रूप में मिलाई दी है.
बट द डिवोटीज हैव कंबाइंड देम इन अ फिजिकल फॉर्म.
क्योंकि पर्सनालिटी एक ही है.
बिकॉज दे आर डेफिनेटली द सेम पर्सनालिटी.
एक ही पर्सनालिटी में दो आत्माएं प्रवेश होकर काम करती है.
टू सोल्स एंटर एंड वर्क इन द सेम पर्सनालिटी.
ब्रह्मा का ही पार्ट जास्ती है.
द रोल ऑफ ब्रह्मा इज सर्टनली लॉन्गर.
याद में रहना कोई पार्ट है क्या?
इज स्टेइंग इन रिमेम्बरेंस अ पार्ट.
पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बुद्धि से बजाया जाता है?
डज समवन प्ले अ रोल थ्रू द कर्मेंद्रिया और थ्रू द इंटेलेक्ट?
कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है.
अ पार्ट इज प्लेड थ्रू द कर्मेंद्रिया.
और शंकर क्या करता है?
एंड वॉट डज शंकर डू?
याद में रहता है.
ही स्टेज इन रिमेम्बरेंस.
ये तो कर्मेंद्रियों से कोई पार्ट नहीं हुआ.
दिस इज इंट अ पार्ट थ्रू द कर्मेंद्रिया.
तो ब्रह्मा का ही बड़ा पार्ट है.
सो सर्टेनली द पार्ट ऑफ ब्रह्मा अलोन इज लॉन्गर.
ब्रह्मा का कहो या विष्णु का कहो, सबसे जास्ती पार्ट इन दोनों का है.
यू मे से ब्रह्मा और विष्णु. इट इज दीज टू हु प्ले द मैक्सिमम पार्ट.
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, फिर ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, तो विष्णु द्वारा पालना.
द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्राह्मण रिलीजन थ्रू ब्रह्मा. देन ब्रह्मा हिमसेल्फ बिकम्स विष्णु. सो देयर इज सस्टेनेंस थ्रू विष्णु.
इन दोनों का पार्ट जास्ती है.
द पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम इज ग्रेटर.
शंकर का क्या पार्ट है? आंख खोली और दुनिया का विनाश हो गया, ये पार्ट.
What is the role of Shankar? He opened his eye and the world is destroyed. This is his part.
आप खोलने में कितनी देर लगती? एक सेकेंड.
How long does it take to open the eye? One second.
तो अच्छा रहे इनकी आंखें बंद ही बनी रहे. क्या खुल जाए सो अच्छा. आंख खुलना माना?
सो इट इज गुड दैट हिज आई रिमेन्स क्लोज्ड. और इज इट गुड इफ हिज आई ओपन? टू ओपन द आई मीन्स व्हाट?
ज्ञान की आंख खुल जाए.
द आई ऑफ नॉलेज शुड ओपन.
जब ज्ञान की आंख खुल जाती है तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आ जाती है.
When the eye of knowledge opens, he attains the stage of Ichha Matram Avidya.
आप मुए मर गई दुनिया.
When you die, the world is dead for you. आप मुए मर गई दुनिया.
बच्चों को रोज समझाया जाता है. स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो फिर तुम्हारी एब्सेंट पड़ जाएगी.
इट इज एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन एवरी डे. इफ यू डोंट स्टडी डेली इन स्कूल, इफ यू वोंट लिसन टू द मुरली, यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट.
रजिस्टर काय के लिए बनाया जाता है?
व्हाई इज द रजिस्टर मेड?
हाजिरी लगाने के लिए रजिस्टर बनाया जाता है ना.
अ रजिस्टर इज मेड to note the attendance, isn't it?
तो ये भी ईश्वरीय स्कूल है.
So this is also an ईश्वरीय स्कूल.
इसमें भी देखा जाता है कि 63 जन्म जो लौकिक पढ़ाइयाँ पढ़ी, उन लौकिक पढ़ाइयों में आत्मा ने जास्ती ध्यान दिया या भगवान बाप आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें जास्ती ध्यान दिया? कौन सी पढ़ाई में जास्ती ध्यान देना चाहिए?
Even here, it is seen that did the soul pay more attention to the Laukic studies, that is studied for 63 births, or did it pay more attention to the studies that God the Father teaches after coming? To which studies should you pay more attention?
ईश्वर बाप आकर पढ़ाते हैं 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है. अब वो पढ़ाई है तो एक जन्म पढ़ो उसी जन्म प्रारब्ध मिले. वो भी मिले मिले न मिले.
स्टूडेंट ईश्वरीय, व्हेन गॉड द फादर कम्स एंड टीचर्स यू रिसीव अटेनमेंट्स फॉर 21 बर्थ्स एंड इन केस ऑफ दो स्टडीज यू स्टडी फॉर वन बर्थ एंड रिसीव द अटेनमेंट्स जस्ट फॉर दैट वन बर्थ एंड दैट टू यू मे और मे नॉट रिसीव इट.
तो कितना बाप आकर के आंखें खोलते हैं कि इस पढ़ाई से तुम्हारा जन्म जन्मांतर का फायदा है और फिर 21 जन्म का ही फायदा नहीं है. यहाँ जो तुम पढ़ाई के संस्कार धारण करते हो, ज्ञान धारण करने के संस्कार धारण करते हो, ये संस्कारों की तीव्रता 63 जन्मों में भी चलती रहेगी.
So the father comes and opens your eyes so much. He explains, through this study, you gain benefit birth after birth. And then, the benefit isn't just for 21 births. The sanskars of studies that you assimilate here, you assimilate the sanskars of acquiring knowledge. The intensity of these sanskars will continue even in the 63 births.
जो ये जितना यहाँ तीखा पुरुषार्थी होगा वहां भी जन्म जन्मांतर कैसा पुरुषार्थ करेगा? तीखा पुरुषार्थ करता रहे.
द मोर इंटेंस पुरुषार्थी समवन इज हियर, व्हाट काइंड ऑफ पुरुषार्थ विल ही मेक देयर फॉर बर्थ आफ्टर बर्थ एज वेल? ही विल कीप मेकिंग इंटेंस पुरुषार्थ.
तो 21 जन्म तो सुहाला होने की गारंटी है ही, लेकिन 63 जन्म में भी वो आत्मा फायदे में रहेगी.
देयर इज डेफिनेटली अ गारंटी टू मेक द 21 बर्थ्स फ्रूटफुल, बट दैट सोल विल बी इन बेनिफिट इवन फॉर द 63 बर्थ्स.
तो यहाँ की एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्मों की सुख शांति कमाई.
सो हियर यू स्टडी फॉर वन बर्थ and make an attainment of peace and happiness for many births.
तो पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए ना?
You certainly need a lift of the study, don't you?
गॉडली यूनिवर्सिटी में एबसेंट थोड़े ही होना चाहिए.
यू शुडंट बी एबसेंट इन द गॉडली यूनिवर्सिटी.
अच्छा, गॉडली यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ाते हैं?
अच्छा, who teaches in the godly university?
God father पढ़ाते हैं.
God the father teaches.
और जो universities होती हैं वो तो मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई है.
The other universities are made by human gurus.
यहाँ एब्सेंट नहीं होना चाहिए.
यू शुडंट बी एब्सेंट हियर.
पढ़ाई कितनी ऊंच है.
द स्टडी इज सो हाई.
जिस पढ़ाई से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो.
यू बिकम द मास्टर ऑफ सुखधाम थ्रू दैट स्टडी.
वहाँ तो अनाज आदि सब फ्री रहता है.
देयर फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट.
कहाँ?
वेयर?
सत्यों है अनाज की कोई कीमत नहीं लगेगी. और यहाँ?
इन द गोल्डन एज फूड ग्रेन्स वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग. एंड हियर?
यहाँ तो अनाज की, सड़े हुए अनाज की भी कीमत. जो भी अनाज मिल रहा है उसमें कीड़े कितने होते हैं.
हियर यू हैव टू पे इवन फॉर रॉटन फूड ग्रेन्स. द फूड ग्रेन्स दैट यू गेट देर आर सो मेनी वर्म्स इन इट.
जो खाद लगाई जाती है उस खाद वाले अनाज में बहुत कीड़े पड़ते हैं.
अ लॉट ऑफ वर्म्स इन्फेस्ट दोस ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड विद दैट फर्टिलाइजर.
इसलिए आजकल ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा दबाव देते हैं.
दिस इज व्हाई दीज डेज पीपल गिव मोर स्ट्रेस ओवर प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग.
ये केमिकल वाली खेती बंद होनी चाहिए.
दिस केमिकल फार्मिंग शुड स्टॉप.
तो वहाँ अनाज साफ फ्री रहता है.
सो देयर फूड ग्रेन्स आर फ्री.
सात्विक अनाज होते हुए भी फ्री रहता है.
डिस्पाइट बीइंग सात्विक ग्रेन्स इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट.
कोई पैसा नहीं लगता.
इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग.
अभी तो अनाज देखो कितना महंगा है.
नाउ लुक फूड ग्रेन्स आर सो कॉस्टली.
जो खाद का अनाज है वो भी महंगा. 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है.
द फूड प्रोड्यूस्ड यूजिंग फर्टिलाइजर्स इज ऑल्सो कॉस्टली. इट हैज बिकम सो एक्सपेंसिव इन 100 ईयर्स.
जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हो तो जानते होंगे कि बचपन में गेहूं क्या भाव था.
The elderly people sitting here would know what the cost of wheat was during their childhood.
क्या भाव था?
What was its cost?
है? अरे याद नहीं है?
अरे don't you remember it?
अरे बचपन में ये पता नहीं कि गेहूं या अनाज क्या भाव था.
अरे डोंट यू नो व्हाट द कॉस्ट ऑफ वीट और ग्रेन्स वाज इन योर चाइल्डहुड.
रुपया 8 आना.
इट वाज अ रुपी और 50 पैसे.
और अब?
एंड व्हाट अबाउट नाउ?
अब तो नोटों के नोट जाते हैं.
People spend bundles of currency notes for it.
100 वर्ष में कितना महंगा हो गया.
In 100 years, it has become so expensive.
नहीं तो आगे कितनी सस्ताई थी.
Otherwise, earlier it was so cheap.
हद के अनाज की ही बात हो रही है कि बेहद के अनाज की भी बात हो रही
है. इज ओनली द टॉपिक ऑफ द लिमिटेड फूड ग्रेन्स बीइंग डिस्कस्ड और इज द टॉपिक ऑफ द अनलिमिटेड फूड ग्रेन्स ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड.
है? बेहद का अनाज भी.
स्टूडेंट रिप्लाइड इवन इन केस ऑफ द अनलिमिटेड फूड
वेद का अनाज कौन सा है?
विच आर द अनलिमिटेड फूड ग्रेन?
नहीं, ज्ञान तो जल होता है, ज्ञान का दूध होता है, पेय जो पीने की चीज है वो ज्ञान है।
स्टूडेंट, नॉलेज? नो, नॉलेज इज इन फैक्ट वाटर। देयर इज द मिल्क ऑफ नॉलेज, दैट इज ड्रिंक। नॉलेज इज समथिंग टू ड्रिंक।
और खाने की चीज है, बुद्धि का भोजन है याद।
एंड रिमेम्बरेंस इज समथिंग टू ईट, द फूड ऑफ द इंटेलेक्ट।
तो बोला आगे अनाज की कितनी सस्ताई थी।
सो इट वॉज सेड अर्लियर फूड ग्रेन्स वर सो चीप।
मना, पहले जब सन 36 था तो जो जो आए ब्राह्मणों की दुनिया में उनका याद ऑटोमेटिक लगती थी या मेहनत करनी पड़ती थी? ऑटोमेटिक याद लगती थी, आने से ही एकदम अवस्था ऊंची चढ़ जाती थी।
इट मीन्स अर्लियर इन द ईयर 1936 ऑल दोज हू केम इन द ब्राह्मण वर्ल्ड वाज देयर रिमेम्बरेंस ऑटोमेटिक और डिड दे हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर इट? Their remembrance was automatic. Just by coming, they used to attain a very high stage.
और अभी खींच खींच के याद करनी पड़ती है।
And now you have to remember him forcibly.
वहां नई दुनिया में तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती।
There in the new world, there isn't anything unattained.
जिसके लिए वहाँ पुरुषार्थ करना पड़े।
For which you might have to make पुरुषार्थ।
वो है ही सुखधाम।
No doubt it is सुखधाम।
तुम अभी सुखधाम के लिए तैयारी कर रहे हो।
Now you are getting ready for Sukhdham.
क्या तैयारी कर रहे
हैं? How are you getting ready?
Beggar to prince बनना है ना?
You have to become a prince from a beggar, don't you?
ठीक है?
What is this?
क्या तैयारी कर रहे हैं?
हाउ आर यू गेटिंग रेडी?
जो भी इस ईश्वरीय ज्ञान में आवे तो पहले ये जुआ खेले।
Whoever comes in this ईश्वरीय knowledge should play this game of dice first.
क्या?
What?
सारा तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करें।
Sacrifice all your body, mind, wealth in the ईश्वरीय service.
इतना इतना स्वाहा करें कि beggar बन जाए।
You should sacrifice it to such an extent that you become a beggar.
इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शंकर का follower नहीं बनना।
This is why it is said in the path of bhakti, don't become a follower of Shankar.
Shankar babutiya hai to tumko bhi kya bana dega? Babutiya langotiya banaye dega.
Shankar is a babutiya. So what will he make you as well? Babutiya, the one who smears the body with ashes. He will make you babutiya or a langotiya, meaning the one who wears only a loincloth.
अभी तुम वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो?
Now you are getting ready to go there. How are you getting ready?
क्या तैयारी कर रहे हो? बेगर टू प्रिंस बनने की तैयारी करते हो।
हाउ आर यू गेटिंग रेडी? यू आर गेटिंग रेडी टू बिकम अ प्रिंस फ्रॉम अ बेगर।
साहूकार लोग कोई अपन को बेगर नहीं समझते।
नन ऑफ द रिच पीपल कंसिडर देमसेल्फ बेगर।
क्यों?
वाई?
जिसके पास प्रैक्टिकल में ढेर सारी धन संपत्ति भरी पड़ी होगी वो बेगर कैसे समझेगा?
इफ समवन हैज सिक्योर्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ इन प्रैक्टिस हाउ कैन ही कंसिडर हिमसेल्फ टू बी अ बेगर?
जिसके पास धन होगा तो धनवान होगा, धनवान होगा तो उसको धन का नशा होगा।
इफ समवन हैज वेल्थ ही विल बी वेल्दी एंड इफ ही इज वेल्दी He will be intoxicated by his wealth.
पहलवान होगा तो उसको तन का नशा होगा।
If he is a wrestler, he will have the intoxication of his body.
कोई बड़ा नेता जनवान होगा तो उसको अपनी नेतागिरी का नशा होगा, मैं बड़ा नेता हूँ।
If he is some big leader, और हैज मैन पावर ही विल हैव द इंटॉक्सिकेशन ऑफ हिज लीडरशिप। आई एम अ ग्रेट लीडर।
जिसको जो भी इस दुनिया की प्रभुता मिलती है उस प्रभुता का नशा मद जरूर चढ़ता है।
विच एवर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड समवन रिसीव्स ही इज सर्टनली इंटॉक्सिकेटेड दैट इज He becomes egoistic by that power.
तो इस दुनिया के जो भी साहूकार लोग हैं वो कोई भी अपन को बेगर नहीं समझते हैं। और तुम?
So none of the rich people of this world consider themselves as a beggar. And you?
तुम अपन को बेगर समझते हो।
You consider yourself as a beggar.
प्रैक्टिकल में बेगर बनेंगे तो समझेंगे या नहीं होंगे तो समझेंगे?
विल यू कंसिडर दिस व्हेन यू बिकम अ बेगर इन प्रैक्टिस और विल यू थिंक दिस इफ यू आरंट अ बेगर?
जो प्रैक्टिकल में बेगर बन चुके होंगे ईश्वरीय सेवा में सब कुछ जिन्होंने अपना अर्पण किया होगा तो अपन को बेगर समझेंगे।
Those who would have already become a beggar in the Ishwariya service in practice, those who would have sacrificed everything, they will consider themselves as a beggar.
Nasa rahega. Ab hum beggar to prince banne wale.
They will feel intoxicated. Now we are going to become a prince from a beggar.
Achha. Bachchon ko Om Shanti.
Achha. Om Shanti to the children.